ग्रंथराश्रमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 12 शीर्षक वृत्रासुर की यशस्वी मृत्यु। श्लोक संख्या 10 बोर्ड पे लिखा है और श्लोक संख्या 9 में तात्पर्य नहीं है, तो उसका एक बार उच्चारण कर देते हैं और फिर 10 पढ़ेंगे। ओजह सहो बलम प्राणम अमृतम मृत्युमेव च तमज्ञाय जनो हेतुम आत्मानं मन्यते जडम। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, हमारी इंद्रियों का शौर्य, मानसिक शक्ति, देहिक बल, जीव शक्ति, अमरत्व एवं मृत्यु सभी कुछ परम भगवान के अधीक्षण के अधीन है। इससे अनवगत मूर्ख लोग अपने जड़ शरीर को ही अपने कार्यकलापों का कारण मानते हैं। तो आज का श्लोक बोर्ड पे इस वाले लिखा, यथा दारुमयी नारी यथा पत्रमयो मृगः एवं भूतानि मघवन् ईशतंत्राणि विद्धि भो। यथा दारुमयी नारी यथा पत्रमयो मृगः एवं भूतानि मघवन् ईशतंत्राणि विद्धि भो। यथा दारुमयी नारी यथा पत्रमयो मृगः एवं भूतानि मघवन् ईशतंत्राणि विद्धि भो। यथा जिस प्रकार दारुमयी लकड़ी की बनी, नारी स्त्री यथा जिस प्रकार पत्रमयो पत्तियों से बना, मृगः पशु एवं इस प्रकार भूतानि सभी वस्तुएं, मघवन हे राजा इंद्र, ईशा श्री भगवान, तंत्राणि आश्रित रहकर, विद्धि कृपया जाने, भोह हे महाशय। तो ये वृत्रासुर जो हैं युद्ध के दौरान इंद्र को ये उपदेश दे रहे हैं। इंद्र के हाथ से वज्र गिर गया है और तब इंद्र बहुत हतोत्साहित हो रहे हैं और उसके बाद ये वृत्रासुर जो हैं इंद्र का उत्साह बढ़ा रहे हैं, उनको अपना कर्तव्य याद दिला रहे हैं और बोल रहे हैं इस बात से। अनुवाद एवं तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद, हे इंद्र, जिस प्रकार काठ की पुतली स्त्री के समान प्रतीत होती हैं, अथवा घास फूस का बना हुआ पशु न तो हिल डुल सकता है और न अपने आप नाच सकता है, वरन नचाने वाले व्यक्ति पर पूरी तरह निर्भर रहता है, उसी प्रकार हम सभी परम नियंता श्री भगवान की इच्छा अनुसार नाचते हैं, कोई भी स्वतंत्र नहीं है। तात्पर्य, इसकी पुष्टि श्री चैतन्य चरितामृत में भी की गई है। आदि लीला 5:142। एकले ईश्वर कृष्ण आरस अभृत्य यारे यही छे नाचा ये तैचय करे नृत्य। केवल भगवान श्री कृष्ण परम नियंता हैं और अन्य सभी उनके दास हैं। वे जिस प्रकार चाहते हैं सभी वैसा ही नाचते हैं। हम सभी श्री कृष्ण के दास हैं, हमारी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। हम सब श्री भगवान की इच्छा अनुसार नाच रहे हैं, किंतु अज्ञान तथा मोह के कारण हम अपने को परम इच्छा से स्वतंत्र मानते हैं। इसलिए ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदः सर्वकारण कारणम्। श्री कृष्ण जिन्हें गोविंद कहा जाता है परम नियंता हैं, उनका शरीर सनातन आनंदमय तथा चिन्मय है। वे सबके आदि हैं, वे अनादि हैं, क्योंकि वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। हरे कृष्ण। तो 9 और 10 का अनुवाद एक बार फिर से पढ़ते हैं। हमारी इंद्रियों का शौर्य, मानसिक शक्ति, दैहिक बल, जीव शक्ति, अमरत्व एवं मृत्यु सभी कुछ परम भगवान के अधीक्षण के अधीन है। इससे अनवगत मूर्ख लोग अपने जड़ शरीर को ही अपने कार्यकलापों का कारण मानते हैं। आज का श्लोक एक पास है, हे इंद्र, जिस प्रकार काठ की पुतली स्त्री के समान प्रतीत होती है अथवा घास फूस का बना हुआ पशु न तो हिल डुल सकता है और न अपने आप नाच सकता है, वरन नचाने वाले व्यक्ति पर पूरी तरह निर्भर रहता है, उसी प्रकार हम सभी परम नियंता श्री भगवान की इच्छा अनुसार नाचते हैं, कोई भी स्वतंत्र नहीं है। तो ये एक शुद्ध भक्त की प्रार्थनाएं और उपदेश है, जो कंप्लीट डिपेंडेंस भगवान के ऊपर, पूर्ण निर्भरता का भाव इसके अंदर व्यक्त किया गया है कि किस प्रकार एक भक्त जो है, भक्त नहीं हर जीवात्मा, बता रहे हैं वृत्रासुर कि सब जीवात्माएं जो है भगवान के ऊपर आश्रित हैं। तो सही भक्तों का आशीर्वाद लेते हुए इसके ऊपर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हालांकि बहुत विचित्र प्रसंग है ये पूरा भागवतम का छठा स्कंध, और इसको चर्चा करना एक पड़ेंगे। भगवान सुप्रीम कंट्रोलर हैं और किस प्रकार से वो जो है अपने भक्तों की रक्षा करते हैं हर समय और कंट्रोल करते हैं किस प्रकार से, और शुद्ध भक्त और एक मिश्रित भक्त या सकाम भक्त या जो भक्त नहीं है उनके ऊपर यही अंतर है। शुद्ध भक्त जो होते हैं उनको हर समय ये ध्यान रहता है, वो इस चेतना में रहते हैं कि वो भगवान पे पूर्णतया निर्भर हैं, हम हर समय भगवान पे पूर्णतया निर्भर रहते हैं। जो सकाम भक्त होते हैं वो जब तकलीफ आती है तो भगवान की शरण में जाते हैं, और जो भक्त अभक्त हैं वो कभी भी नहीं जाते ऐसा करके। तो अब ये भागवतम का जो छठा स्कंध है, ये इसका जो मुख्य शीर्षक है, जो मुख्य टॉपिक है चर्चा का, वो है पोषण। इसके गौर कृष्ण प्रभु जब आए थे तो प्रभु जी बता रहे थे कि इस पूरे स्कंद के अंदर बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं, और विश्वनाथ चक्र ठाकुर बताते हैं कि हालांकि गीता में भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यसि न मे प्रियः, कि मैं जो हूं मैं सभी सब समान है, ना मैं किसे द्वेष करता हूं ना मैं कोई अधिक प्रिय है, लेकिन फिर भी विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कि भगवान जो है अपने भक्तों के प्रति विशेष रूप से पक्षपात करते हैं ऐसा करके वो बताते हैं। और इसके कई, तो ये जो भक्तों का किस प्रकार से भगवान पोषण करते हैं, जिस प्रकार एक माता अपने शिशु का पोषण करती है, उसी प्रकार भगवान अपने हर एक भक्त का जो है बहुत ही ध्यान पूर्वक उसका जो है केयर करते हैं और उसकी भक्ति का पोषण करते हैं, कि उसकी भक्ति किस प्रकार वो भक्त जो है भगवान के चरण कमलों को पा सके और भगवान की भक्ति में लगा रहे इस प्रकार से। तो भगवान बहुत यूनिक अरेंजमेंट्स करते हैं, और इसीलिए भगवान जो ये पक्षपात करते हैं कि किस प्रकार वो भक्त का आकर्षण भगवान के चरणों के प्रति निरंतर बढ़ता रहे। तो इस स्कंद के जो है हम स्टार्टिंग से भी देखें तो बहुत विचित्र विचित्र लीलाएं हैं, और बहुत ही शिक्षाप्रद ये स्कंद है पूरा। श्री जगन्नाथ बलि सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा राधिकन भगवान की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौणिताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो सबसे पहले जो घटना आती है वो है अजामिल की। तो अजामिल की घटना में देखा जाए तो भगवान ने, क्योंकि वह अजामिल, हालांकि उसने हर प्रकार के अधम नीच कार्य किए थे और वह पतित, अपने ब्राह्मण सर से पतित हो चुका था, लेकिन क्योंकि अंत समय में उसने भगवान के नाम का उच्चारण किया नारायण, और इस उच्चारण करने मात्र से भगवान ने क्या किया, इस बीच में हस्तक्षेप किया। हालांकि अजामिल के कर्मों के अनुसार तो उन्हें कोई बहुत ही नरक की गति प्राप्त होनी चाहिए थी शायद, लेकिन क्योंकि उन्होंने भगवान के नामों का उच्चारण किया तो भगवान ने तुरंत ही जो है उनके कर्मों की गति में हस्तक्षेप किया और उनको जो है शुद्ध भक्ति करने का अवसर प्रदान किया, और तुरंत विष्णु दूतों को वहां पर भेजा। तो अजामिल की भक्ति का पोषण किया भगवान ने, और कोई अगर लॉजिकल दृष्टि देखा जाए तो कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, बस क्यों, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के प्रति विशेष कृपा करते हैं, कोई थोड़ी सी भक्ति करता है तो भगवान कहीं भूलते नहीं है और उसका पोषण करने का प्रयास करते हैं। परमात्मा हमारे हृदय में हमेशा अलर्ट रहते हैं, सतर्क रहते हैं, कब यह जीवात्मा मेरे नजदीक आने की इच्छा भी करता है, और जैसे ही जीवात्मा की थोड़ी बहुत भी इच्छा होती है भगवान हमेशा डायरेक्ट करते हैं उसे, प्रयास करते हैं कि किस प्रकार मेरी भक्ति में जुड़ सके। हालांकि सुप्रीम कंट्रोलर हैं, परम नियंता हैं, लेकिन फिर भी हमें रोबोट की तरह कंट्रोल नहीं करते हैं। हर जीव के पास उन्होंने इच्छा शक्ति प्रदान की है और एक बहुत ही सूक्ष्म स्वतंत्रता प्रदान की है खाली इच्छा शक्ति की, अब भगवान बाकी सब करते हैं। इसके बाद अगला प्रसंग आता है प्रजापति दक्ष का। तो अगर देखा जाए तो प्रजापति दक्ष का जो प्रसंग है ये भी बहुत विचित्र है। क्यों, चतुर्थ चौथे स्कंद के अंदर हम पढ़ते हैं वो लीला जिसके अंदर इन्होंने शिवजी के प्रति अपराध किया था, और फिर इनके सर पे बकरे का सर लगाया जाता है, और बाद में वो देह त्याग करते हैं, और बाद में प्रचेताओं के पुत्र के रूप में उत्पन्न होते हैं, प्रजापति होते हैं। तो और इस पहले शिवजी का अपराध किया उन्होंने, लेकिन फिर भी भगवान ने उन्हें प्रजापति बनाए रखा, सिंह में लगाए रखा। और उसके बाद में जो है इस प्रसंग के अंदर नारद मुनि उनके 10,000 और फिर 1,000 11,000 पुत्रों को जो है वैराग्य के जीवन के प्रेरित करते हैं, और सब वैरागी हो जाते हैं, और प्रजापति दक्ष बिल्कुल आग बबूला हो जाते हैं, बिल्कुल जो है क्रोध से, और नारद मुनि को इतना क्रोधित हो जाते हैं वो कि श्राप देते हैं नारद मुनि को, और नारद मुनि के प्रति भी अपराध करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी आते, ये दक्ष प्रजापति बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होकर जो है हताश होकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी एक क्षण भी नहीं कहते कि तुमने नारद के प्रति अपराध किया है, वो कहे नारद का तो काम ही है, वो क्या करेगा, वो ब्रह्मचारी है, वैराग्य का जीवन में बड़ी प्रेरित करेगा, लेकिन अभी आप क्या करो, आप जो है पुत्रियों की उत्पत्ति करो। तो नारद मुनि पुत्रियों का कुछ नहीं कर सकते, तो ब्रह्मा जी उन्हें दक्ष को ये नहीं कहते कि तुमने नारद के प्रति अपराध किया, जाकर क्षमा मांगो या कुछ करो, सेवा में लगाए रखते हैं उन्हें। और दक्ष भी जब दक्ष प्रजापति दक्ष चाहे शिव जी के प्रति अपराध किया उन्होंने, और शुद्ध भक्त भी नहीं है, लेकिन जब वो भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं, हंस गुहे प्रार्थनाएं करते हैं और तपस्या करते हैं, तो भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं, उनको दर्शन देते हैं। तो दक्ष भी कोई साधारण जीव नहीं है, और भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं, चाहे वो एक मिश्रित भक्त हो, सकाम भक्त हो, तो भगवान बहुत विचित्र हैं। और प्रजापति दक्ष को, और बाद में 8वें स्कंद में हम देखेंगे तो यही दक्ष जो है दक्ष सावरणी मनु बनेंगे, बाद में जो है भगवान इन्हें मनु को जो है सेवा देंगे इस प्रकार से। तो भगवान जो है सबके उत्तर पूछे हुए, वैष्णव अपराध भी किया, उन्होंने दो दो महाजनों के पति, शिव जी के पति और नारद जी के पति, लेकिन फिर भी प्रजापति क्यों बने, इसका एक ही उत्तर है कि वो भगवान जो है अपने भक्तों का हमेशा पोषण करते हैं, और वो ये नहीं, भक्त ने कितनी भी गलती करी हो भगवान गलती देखते ही नहीं है, भगवान यही देखते हैं कि उसने क्या क्या सेवा करी है, और उसे कैसे इसको और सेवा में लगाए रखा जा सकता है, इसका शुद्धिकरण किया जा सकता है, कैसे उसकी भक्ति का पोषण किया जा सकता है। और यदि कोई भक्त गलती करता भी है तो भगवान इस प्रकार से व्यवस्था करते हैं कि वो जो है सही मार्ग पे आ सके। उसके बाद हम देखते हैं इस पूरे बाकी के स्कंध में, तो लगभग लगभग जो सेंट्रल रोल है, वो सेंट्रल कैरेक्टर है, वो इंद्र का है, चाहे विलेन का रोल निभा रहे हो कुछ प्रकार से ऐसा लग रहा हो, लेकिन पूरे इस स्कंध के अंत तक भी जब माता दिति के 39 जो पुत्र होंगे मरुत, तब तक इंद्र जो है इस कैरेक्टर के अंदर रहेंगे। ऑफकोर्स बीच में महाराज चित्रकेतु की शुद्ध भक्ति की चर्चा भी होगी। तो इंद्र के अगर कार्य देखें तो वो भी बहुत विचित्र हैं। सबसे पहले अपने गुरु के प्रति अपराध किया उन्होंने, बृहस्पति के प्रति, और ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने फिर कुछ नहीं बोला उन्हें कि जाके बृहस्पति क्षमा मांगो, ऐसा भी नहीं बोला उन्हें, उन्होंने बोला विश्वरूप को जाके अपना पुरोहित बना लीजिए और यज्ञ कीजिए। विश्वरूप तो त्वष्टा के पुत्र थे, ब्राह्मण थे, जब वो साथ साथ असुरों को भी दानवों को भी जो है आहुति दे रहे थे, तो इंद्र ने क्रोधित होकर विश्वरूप का सर काट दिया, तीनों जो सर थे उनके वो काट दिए। ब्राह्मण हत्या का पाप किया, कुछ नहीं बोला, हालांकि हाँ उनको पाप लगा, और वो पाप उन्होंने जो है चार अलग अलग व्यक्तियों को बांट दिए, इस वृक्षों को और इस प्रकार से जल को और स्त्रियों को इस प्रकार से। और तो त्वष्टा जो है, अब सबसे बड़ी बात यह है, विश्वरूप जो थे उन्हें नारायण कवच नामक मंत्र दे रहे थे, पूरा एक अध्याय है नारायण कवच, और वो जो शीर्षक है, जो अध्याय है, उस नारायण कवच के जो प्रार्थनाएं हैं वो मुख्यतः क्या है, अगर देखें तो भगवान वामन नरसिंहदेव की स्तुतियां हैं, भगवान विष्णु की मंत्र की व्याख्या है, भगवान हयग्रीव नारद कूर्म व्यास बुद्ध और कल्कि की स्तुति है, और उसमें सुदर्शन चक्र की स्तुति है, और फिर भगवान के भक्तों का महिमा है और नारायण कवच की महिमा है। ये पूरा नारायण कवच जो है ये मंत्र विश्वरूप इंद्र को प्रदान करते हैं, जिससे इंद्र की हर समय रक्षा हो सके। और ये विश्व जो मंत्र है विश्वरूप को दिया होता है त्वष्टा ने, और त्वष्टा को प्राप्त हुआ किससे प्राप्त हुआ होता है, दधीचि मुनि से जो है, तो दधीचि मुनि ने से यह मंत्र प्राप्त किया होता है विश्वरूप को, विश्वरूप को त्वष्टा, त्वष्टा से विश्वरूप, विश्वरूप से इंद्र को प्राप्त हुआ होता है, और उन्हीं विश्वरूप की हत्या कर देते हैं ये, और इसके बाद त्वष्टा क्रोध होकर जो है यज्ञ करते हैं और वृत्रासुर की उत्पत्ति होती है। और ये वृत्रासुर सबको मालूम है, चित्रकेतु महाराज थे पूर्व जन्म के अंदर, लेकिन यहां पे देखा जाए तो और जब विश्व रूप जब ये वृत्रासुर की उत्पत्ति होती है तो सभी देवतागण भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान को जाते भगवान बचाइए आप, क्योंकि विश्व रूप वृत्रासुर के जब उत्पन्न होते ही सारे देवतागण जो बिल्कुल भयभीत और सभी देवताओं को प्रैक्टिकली वो जो है उनकी शक्ति कुछ नहीं थी वृत्रासुर के सामने, तो भगवान की स्तुतियां करते हैं वो और प्रार्थना करते हैं, भगवान प्रकट होते हैं देवताओं के सामने भी और बहुत सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं जो देवतागण है सभी, और भगवान के सामने प्रकट होते हैं। और भगवान प्रकट होते हैं लेकिन खुश बिल्कुल नहीं होते, भगवान बहुत काफी नाराजगी प्रस्तुत करते हैं और उन्हें कहते हैं कि जो शुद्ध भक्त होता है वो कुछ नहीं मांगता मेरे से, ऐसे करके भगवान ऑलमोस्ट देवताओं को जो है डांटते हैं ऑलमोस्ट प्रेम से बहुत ही, कि हालांकि उनको ग्लोरीफाई भी करते हैं लेकिन उनकी कमी भी उनको बताते हैं कि नहीं शुद्ध भक्ति ज्यादा महान है, क्योंकि आप सब लोगों ने मांगा है मेरे से कि मैं वृत्रासुर का वध करूं, इसलिए आप लोग शुद्ध भक्त नहीं हो, भगवान जो ऐसा उनको बताते हैं देवताओं को। लेकिन देवता क्योंकि सकाम भक्त हैं, लेकिन देवताओं की एक बहुत विशेष बात है, वो सुर क्यों हैं, क्योंकि जब भी संकट आता है भगवान की शरण ग्रहण करते हैं ऐसा करके, तो ये विशेष बात है देवताओं की कि हमेशा भगवान के अधीनस्थ रहते हैं और भगवान इसलिए उनका मार्गदर्शन करते हैं और उनका भी पोषण करते हैं भगवान। और फिर भगवान कहते हैं कि आप किसके पास जाओ, दधीची मुनि के पास जाओ और उनकी हड्डियां मांगो। और क्यों मांगो, क्योंकि इसकी भी कथा कई पुराणों में कई आचार्यगण करते हैं कि दधीची मुनि जो है उनसे अश्विनी कुमार क्या करते हैं, वो ब्रह्म विद्या जानना चाहते थे और इंद्र आते हैं कहते हैं कि अगर आपने ब्रह्म विद्या उनको दी तो मैं आपका वध कर दूंगा। तो सभी अश्विनी कुमार कहते हैं कि हम आपको क्या करते हैं, आपका सिर हम पहले काट देते हैं, घोड़े का सिर लगा देते हैं और घोड़े के सिर से आप ये विद्या दे दीजिएगा, बाद में इंद्र आएगा घोड़े का सिर काटेगा तो हम असली सिर लगा देंगे ऐसे करके। तो देखिए दधीची मुनि ने ब्रह्म विद्या फिर अश्विनी कुमारों को देते हैं क्योंकि ब्राह्मण है उनका काम है यजन याजन पठन पाठन, तो वो तो उनको ब्रह्म विद्या प्रदान करते हैं। और ये नारायण कवच उन दधीची मुनि के द्वारा प्राप्त होता है और इंद्र उन दधीची मुनि का पहले वध कर चुके होते हैं और अश्विनी कुमार दधीची मुनि का असली सर लगा देते हैं। और भगवान देखे किस प्रकार से व्यवस्था करते हैं, उन्हीं दधीची मुनि के पास इंद्र को भेजते हैं वापस कि आप जाइए और उन्हीं से उनका शरीर मांगिए। सोचिए भगवान ने कहा वो शुद्ध भक्त हैं और भगवान भी वृत्रासुर का गुणगान करते हैं। सोचिए देवताओं को तो नाराज होते हैं उनसे थोड़ा बहुत, लेकिन वृत्रासुर गुणगान करते हैं, आप चिंता मत करो वृत्रासुर मारा जाएगा और वो आपसे ईर्ष्या नहीं करता है, वो परम भक्त है। भगवान इस बार वृत्रासुर का गुणगान करते हैं और फिर जो है और यहां दधीची मुनि के पास भेजते हैं सभी देवताओं को। और सोचिए इंद्र ने दधीची मुनि का ही पहले वध किया होता है, उन्हीं दधीची इंद्र को जाके सभी देवतागण जाते हैं और उनसे जो है उनका शरीर मांगते हैं और विश्वकर्मा जो है उनकी हड्डियों से जो है ये वज्र बनाते हैं। और साथ साथ भगवान कहते हैं कि उस जो वज्र होगा उसमें मेरी आध्यात्मिक शक्ति पूरित होगी, तो उस वध से वृत्रासुर का वध निश्चित रूप संभव हो पाएगा। और भगवान वृत्रासुर का वध नहीं करते और यहां पे इंद्र जो है फिर ये शीर्षक सबको मालूम है पिछले दिनों से किस प्रकार वृत्रासुर की शुद्ध भक्ति का कि अटूट भक्ति का वर्णन किया गया है यहाँ पे कि युद्ध क्षेत्र में एक तरफ युद्ध कर रहे हैं और दूसरे ऊपर भगवान को जो है भगवान के के बारे में कथा कर रहे हैं प्रवचन कर रहे हैं और समाधिस्थ हो जाते हैं लिटरली भगवान के गुणगान को याद करते करते, जिस पर गौर कृष्ण प्रभु बहुत ग्राफिकली डिस्क्राइब कर रहे थे कि वो अभी पहुंच गए हैं वहां पर ऐसे लगता है। और फिर जो है इंद्र उनकी एक भुजा काटते हैं और ये आज का जो श्लोक है तब वृत्रासुर बताते हैं कि हम सब जो हैं अधीनस्थ हैं, हम स्वतंत्र नहीं है हम में से कोई, हालांकि मूर्खतावश हम ये सोच सकते हैं कि हम सब स्वतंत्र हैं या ईश्वर हैं, ये हो सकता है अज्ञानतावश और मूर्खतावश हम ये सोच सकें। इसके बाद तो अब इस प्रकार से ये आज का श्लोक है, इसके बाद में क्या होगा, इंद्र जो को ऐरावत समेत वृत्रासुर निकल जाएंगे लेकिन उसे नारायण कवच भगवान के नामों द्वारा इंद्र की जो है रक्षा होती है और इंद्र जो है बाहर निकल के आते हैं और वृत्रासुर का सर काटते हैं। और विश्वनाथ ठाकुर अपने टीका में बताते हैं, प्रभुपाद जी आगे आखिरी अध्याय के आखिरी श्लोक में बताएंगे कि वृत्रासुर वास्तविकता में पहले शरीर छोड़ चुके थे, वो समाधिस्थ हो चुके थे क्योंकि उन्हें लगा इंद्र तो मारा चुका है ऑलरेडी मारा जा चुका है तो वो भी समाधिस्थ होकर शरीर छोड़ देते हैं, इसलिए पूरा एक साल लगता है जो है वृत्रासुर का सर काटने के अंदर जो है। और इसके बाद जो है लेकिन अगला जो अध्याय शुरू होगा तो देखिएगा कि इंद्र की महानता का वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद जी। कह रहे सभी लोग बहुत खुश होते हैं, सभी देवतागण, कि अच्छा वृत्रासुर जो है मारा गया। लेकिन लेकिन इंद्र बहुत जो है दुखी होते हैं कि उन्हें पता था ब्रह्म हत्या का उन्हें पाप लगा, एक ब्राह्मण की हत्या का, और वो देखते हैं साक्षात पाप एक स्त्री के रूप में उनका पीछा कर रहा है। और इंद्र को मालूम होता है कि बहुत महान भक्त का मैंने वर्णन किया वर किया है, और अभी कुछ समय बाद इंद्र भी बोलेंगे और इंद्र वृत्रासुर गुणगान करेंगे। हालांकि आप असुर योनि में हो लेकिन आपका आपका जो चित्त है भगवान में हर क्षण स्थित है। तो और फिर जो है इंद्र फाइनली वृत्रासुर का वध करते हैं, और बाद में इंद्र जो है पश्चाताप करते हैं, लक्ष्मी देवी के अधीनस्थ होकर 1000 वर्ष तपस्या करते हैं और फिर यज्ञ करते हैं और फिर इस पाप से छुटकारा प्राप्त करते हैं। लेकिन इस बीच क्या होता है, जो असुरों की माता होती है, दैत्यों की माता होती है, माता दिति, उनको बहुत क्रोध आता है। तो वो कश्यप मुनि के पास जाती हैं और क्या करती हैं, उनसे जो है प्रार्थना करती है कि मुझे पुत्र उत्पन्न हो जो कि इंद्र का वध कर सके। तो और कश्यप मुनि, अब वो देवताओं के भी पिता हैं, वो चाहते नहीं थे कि इंद्र का वध हो। तो उन्होंने कहा अब कैसे किया जाए, तो वो क्या करते हैं कि दिति की इच्छाएं पूरी करते हैं और कहते हैं कि आप एक पुंसवन नामक व्रत का पालन करो, और वो व्रत वास्तविकता में कुछ नहीं है, केवल जो वैष्णव शिष्टाचार है उनका पालन करना बताया गया है उसके अंदर, कि भगवान के नामों का जप गुणगान करना इस प्रकार से। और उसके अंदर भी श्रील प्रभुपाद जी जो है और यन भागवतम के सुखदेव गोस्वामी भगवान के नामों की वर्णना करते हैं। और इस प्रकार लगभग 1 साल तक माता दीति जो है उस व्रत का पालन करने का प्रयास करती है, इस इच्छा से कि इंद्र का शत्रु इंद्र की मृत्यु के लिए उत्पन्न हो। इंद्र को मालूम होता है माता दीति का जो जो मोटिव है, जो लक्ष्य है, तो इंद्र क्या करते हैं, वहीं पर ही उनकी सेवा करते हैं 1 साल तक, उनके गर्भावस्था के दौरान उनकी सेवा करते हैं, ये मौका देखते हुए कि उस व्रत में थोड़ी सी भी गलती हो माता दीति से तो मैं उनके गर्भ में जाकर उस भ्रूण की हत्या कर सकूं ताकि वो उत्पन्न ही ना हो। और ऐसे ही होता है, माता दीति बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही होती हैं, लेकिन एक दिन उनसे कुछ चूक हो जाती है, और जिस समय वो निद्रा में होती हैं तो उस समय इंद्र जाते हैं गर्भ के अंदर और अपने वज्र से जो भ्रूण होता है उसकी उसके 7 टुकड़े कर देते हैं, और फिर हर एक टुकड़े के और 7 टुकड़े कर देते हैं, लेकिन भ्रूण की हत्या नहीं होती, मरता नहीं है। तो इस प्रकार से 49 जो है 49 जो है पुत्र उत्पन्न होते हैं। और माता दीति जागती हैं तो देखती हैं, और सारे जो मरुत वो जो संतान होती है वो इंद्र को कहते हैं हम तो तुम्हारे भाई हैं, हमारी हत्या क्यों कर रहे हो। तो इंद्र देखते हैं कि अच्छा, बोले हम सब मरुत हैं, मरुत तो इस प्रकार से, और आप ही के जो है भाई हैं, तो देखते हैं कि ये दैत्य नहीं है, मेरा वध नहीं करेंगे, तो इंद्र उनको छोड़ देते हैं। और माता दीति जो है जब वो देखते हैं कि ये मैंने तो एक पुत्र की इच्छा करी थी, 49 कैसे हो गए, तो इंद्र फिर बताते हैं कि मैं 1 साल से इस प्रकार से जो है आपकी सेवा कर रहा था इस इच्छा से, और आपकी ये इच्छा थी। तो इंद्र बिल्कुल ऑनेस्टली कन्फेस करते हैं, और माता दीति क्योंकि उस व्रत का पालन कर रही होती हैं जिसमें भगवान के नामों का उच्चारण है, उनका भी शुद्धिकरण हो जाता है, तो वो भी इंद्र से बहुत प्रसन्न होती हैं, और उनकी सेवा से भी और उनकी ईमानदारी से भी, उन्होंने सब कुछ बताया, और उन्हें छोड़ देती हैं, और 49 मरुत जो हैं इंद्र के साथ देवलोक वापस चले जाते हैं। और इस प्रकार से स्कंद के अंदर जो है भगवान के नामों की व्याख्या करते हुए स्कंद का अंत होता है। और इस बीच में एक कथा और आती है, वो है महाराज चित्रकेतु की, जो है महाराज चित्रकेतु किस प्रकार विषय जीवन के अंदर संलग्न थे, और फिर अंगिरा मुनि और नारद मुनि की कृपा से जो है उनकी अज्ञानता दूर होती है, और फिर उन्हें एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना नारद मुनि देते हैं, बहुत ही सुंदर गुणगान है उसके अंदर। और प्रभुपाद जी फिर लंबे लंबे तात्पर्य लिखे हैं हरिराम की गुणगान करते हुए उसके अंदर भी, और जब वो उन मंत्रों का जाप करते हैं महाराज चित्रकेतु, तो एक सप्ताह के अंदर 7 दिन के अंदर जो है भगवान के दर्शन प्राप्त करते हैं, और भगवान के दर्शन प्राप्त करते हैं महाराज चित्रकेतु, फिर बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं भगवान को, और दर्शन करके वापिस आ रहे होते हैं, और उनके साथ ये लीला होती है। क्योंकि अब ये लीला क्यों होती है, क्यों महाराज चित्रकेतु जिन्हें भगवान के दर्शन प्राप्त हुए इस प्रकार से असुर बनना पड़ा, तो आचार्यगण बताते हैं इसका मुख्य लक्ष्य कारण ये था, क्योंकि यदि वह गंधर्व राज रहते तो बहुत अनेकों जन्मों तक, अनेकों सालों तक उन्हें ऐसी रहना पड़ता, भगवान चाहते थे कि मेरा भक्त जल्दी जल्दी मेरे पास आए, तो भगवान अपने हर भक्त का पोषण करते हैं, है कि नहीं। इंद्र चाहे कितनी बड़ी बड़ी गलतियां क्यों ना करें, लेकिन फिर भी भगवान पोषण करते हैं उनका भी। और उसी प्रकार से भगवान यहां महाराज चित्रकेतु की भक्ति का भी पोषण करते हैं। और अगर श्राप दिया वृत्रासुर को, इंद्र चित्रकेतु महाराज को श्राप मिला, वृत्रासुर बने, बहुत जल्द इंद्र के द्वारा मारे गए और वो जो है बहुत शीघ्र अति शीघ्र भगवान के धाम पहुंच गए। तो भगवान हर भक्त का जो है लौल्य बढ़ाने के लिए इस प्रकार से उसका पोषण कर, उसकी भक्ति का पोषण करते रहते हैं। तो ये पूरे स्कंद के अंदर जो है ये लीलाएं इस प्रकार से की गई हैं कि हर भक्त को कॉन्फिडेंस देने के लिए कि चिंता मत कीजिए, हम जो भी भक्ति कर रहे हैं भगवान देख रहे हैं उसे। लेकिन बार बार इस पूरे अध्याय के अंदर इंद्र अपने जो है मेंटेलिटी से हमको ये सिखा रहे हैं कि हमें सकाम भाव से भगवान की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यहां पे जो अनुवाद के अंदर इस प्रकार से लिखा है कि जिस प्रकार काठ की पुतली स्त्री के समान प्रतीत होती है, अथवा घास फूस का बना हुआ पशु न तो हिल डुल सकता है और न अपने आप नाच सकता है, वरन नचाने वाले व्यक्ति पर पूरी तरह निर्भर रहता है, उसी तरह हम सभी परम नियंता श्री भगवान की इच्छा अनुसार नाचते हैं। तो एक भक्त बता रहे थे कि अधिकांश लोग जब मंदिर जाते हैं तो ऐसे जाते हैं, भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो, है कि नहीं। जो है इस प्रकार जाते हैं, भगवान ये देही वो देही, धनम देही जनम देही रूपति भार्या देही यशम देही जॉब देही सब देही। तो इस प्रकार से बोले इस्कॉन मंदिर में जब धीरे धीरे आते हैं लोग क्या सीख जाते हैं, वो ऐसे नहीं ऐसे कर देने लग जाते हैं, पूर्ण शरणागति जो है भगवान के प्रति सीख जाते हैं इस प्रकार से। तो कि हमें भगवान से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, अगर मांगे तो शुद्ध भक्त क्या मांगता है कि भगवान के निरंतर सेवा में लगे रहे इस प्रकार से, और भगवान का स्मरण कभी ना भूलें। तो इस स्कंद के द्वारा हमें एक चीज इन सब लीलाओं के द्वारा सीखने को मिलती है कि हमें भगवान की इच्छा अनुसार कार्य करना चाहिए, ये नहीं कि भगवान को अपनी इच्छा अपनी इच्छाएं मनवाना चाहिए भगवान से, भगवान मेरी ये इच्छा है पूरी कर दीजिए, ये इच्छा है पूरी कर दीजिए, इसके बाद मैं आपकी शरण ग्रहण करूंगा। कई बार भक्त लोग बोलते हैं प्रभु जी एक बार लाइफ कंफर्टेबल हो जाए, सेटल हो जाऊं, फिर भगवान की भक्ति करूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठाकुर भक्ति विनोद कह रहे हैं, निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया तुम्हार इच्छा याची निर्भर करिया, कि अब मैंने अपनी बल बुद्धि का भरोसा करना छोड़ दिया है तथा अब मैं संपूर्ण रूप से आपकी इच्छा पर निर्भर हूं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा जो है इन लीलाओं के द्वारा ये जानना चाहिए कि भगवान की शुद्ध भक्ति, अपेरेंटली हो सकता है शुद्ध भक्तों को बहुत बड़ा लॉस सहन करना पड़ा हो। कोई अगर देखिए, ये जो भगवान और उनके बीच का संबंध है केवल भक्ति समझ सकते हैं। साधारण किसी अगर आप हम व्यक्ति को बताएंगे कि देखिए चित्रकेतु महान ने भगवान की भक्ति करी और उसका परिणाम क्या मिला, असुर बन गए, बोले क्यों करूं, दधीची मुनि भगवान की शुद्ध भक्ति, बोले हड्डियां मांगो। वैसे इंद्र देखा जाए तो बहुत बढ़िया है कि नहीं, इंद्र का अपना पोजीशन मेंटेन्ड है साधारण देखा जाए तो। लेकिन एक केवल भक्ति समझ सकते हैं कि वास्तविकता में भगवान जो है हालांकि परम नियंता हों लेकिन शुद्ध भक्ति के द्वारा नियंत्रित होते हैं। जिस प्रकार से अर्जुन और दुर्योधन जब महाभारत युद्ध के पहले भगवान के पास जाते हैं तो भगवान का अंदर रखते हैं, व्हाट डू यू वांट, मी और माय एनर्जीज, आप क्या चाहते हो, मुझे चाहते हो मेरी शक्ति चाहते हो। और जो असुर चेतना के व्यक्ति होते हैं चाहे भगवान के पास भी आए या अल्प बुद्धि वाले होते हैं, वो क्या कहते हैं, भगवान आपकी शक्ति चाहिए हमें। लेकिन अर्जुन क्या मांगते हैं, भगवान आप चाहिए, चाहे निहत्ते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहिए हमें ऐसे करके, फिर चाहे हार भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है बट आप हमारे साथ हैं, क्योंकि असली जीत वही है कि हम कितना भगवान के शरणागत हैं, भगवान हमारे कितना साथ है, वो वास्तविक जीत है इस प्रकार से। और इंद्र के हम देखें अगर जीवन में भी देखें तो संकट ही संकट है कि नहीं। पहले जब वो क्या बोलते हैं उनका भोग ऐश्वर्य था तो उसमें लिप्त होकर मदान होकर अपने गुरु बृहस्पति का अपमान किया, और फिर विश्व ब्राह्मण हत्या का वध किया। जब क्रोध आ गया, पहले मद के अंतर्गत आ गए, फिर क्रोध के अंतर्गत, और उसके बाद अभी देखिए भय, हमेशा इतने भयभीत हैं कि किस प्रकार से तुरंत देखें तो वृत्रासुर एकदम कॉन्फिडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंद्र के देखे तो हर क्षण उनको जो भय भय लगा हुआ है बिल्कुल। हालांकि वो बहुत शक्तिशाली है इंद्र भी और भगवान के भक्त भी हैं, लेकिन फिर भी हमेशा भयभीत है क्योंकि सकाम भक्त हैं। और इसके बाद में एक खतरा टला तो बाद में उनको पश्चाताप हो रहा है कि मैंने एक ब्राह्मण की हत्या करी, इस प्रकार से ब्रह्म हत्या का मुझे पाप लगा। इसके बाद में फिर उनका एक उनका ऑपुलेंस है, थोड़े दिनों बाद एक और शत्रु उत्पन्न हो गया, माता दीति जो है कर रही हैं। तो इस प्रकार से कंटिन्यूअसली हम देखें तो इंद्र के पास पोस्ट है, जहां पोस्ट होती है तो बहुत सारे शत्रु निश्चित रूप से उत्पन्न होते ही होते हैं, है कि नहीं। लेकिन शुद्ध भक्त है वो उसका भगवान हमेशा रक्षा करते हैं। और ये भक्त लोग और उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार से एक बिल्ली का बच्चा होता है तो बिल्ली का बच्चा कैसे रहता है, वो हमेशा अपने माता के मुंह में रहता है और सुरक्षित रहता है। वैसे ही एक भक्त जो होता है उसकी चिंता भगवान करते हैं हर समय। और तभी भगवान गीता में जो है ऐलान करते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, कि मेरे भक्त पास जो कमी है उसे मैं पूरा करता हूं और जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं। तो इसीलिए कभी भी एक भक्त को जो है, एक साधक भक्त को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे जो है भगवान के चरण कमल ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इस प्रकार से। और फिर इस इन अध्यायों के द्वारा कभी कभी हमें लग सकता है कि डेमीगॉड्स तो बिल्कुल ही मतलब देवतागढ़ जो है वो क्या है, मतलब ऐसे करके। तो कई बार ये भक्तों का टेंडेंसी हो सकती है कि हम बहुत स्ट्रांग परसेप्शंस बना सके देवी देवताओं के अगेंस्ट। तो हमें वो अपराध भी नहीं करना चाहिए कि देवी देवता हैं, चाहे वो सकाम भक्त हो लेकिन फिर भी वो भक्त हैं और भगवान की एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रहे हैं। सो वी शुड नॉट जो है उनके प्रति कोई अपराध नहीं करना चाहिए ऐसे करके। कई बार हम देवी देवताओं के प्रति बहुत सारे अपराध कर देते हैं, और ना ही हमें देवी देवताओं का भगवान के समान इक्वेट करना चाहिए। उनका आदर जरूर करना चाहिए लेकिन ये भी जानना चाहिए कि भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है, और ये भी जानना चाहिए कि वो साधारण व्यक्ति भी नहीं है, हमारी तरह भी नहीं है कि हम उनके बारे में कुछ भी बोल सके ऐसा करके। तो इंद्र चाहे कैसे भी हो, प्रभुपाद जी अगले श्लोक अगले अध्याय के प्रसंग में ही बोलेंगे कि एक महान व्यक्ति का लक्षण क्या होता है, महान पुरुष का स्वभाव ही होता है ऐसा होता है। क्योंकि इंद्र जब वृत्रासुर मारा गया तो इंद्र को छोड़कर सभी लोग प्रसन्न हुए। इसका कारण यह था कि इंद्र वृत्रासुर की स्थिति से परिचित था। महान पुरुष का स्वभाव ही होता है, यदि कोई महान पुरुष अवैध रीति से धन प्राप्त करता है तो वह लज्जित होता है तथा उसे पश्चाताप करता है। तो रिपेंटेंस इज द क्वालिटी ऑफ अ ग्रेट सोल। जिस व्यक्ति के हृदय के अंदर पश्चाताप होता है तो वह महान व्यक्ति है ऐसे करके। और तो इस प्रकार से हम देखें कि यदि हमारा भौतिक ऐश्वर्य होता है तो उस भौतिक सुख के साथ हमेशा जो है भय बना रहेगा हमेशा। तो एक भक्त जो होता है उसे जानना चाहिए, एकल ईश्वर कृष्ण आर सभृत यारे ये नाचाए कार्य नित्य, कि भगवान कृष्ण परम नियंत्र, अन्य सभी उनके दास हैं। और दास बनने में बहुत फायदा है। क्या फायदा है? सारा बर्डन किसका है? मालिक का है कि नहीं। सारी चिंता मालिक की, अपने दास को मेंटेन करने की, इसका पालन। तभी तो भक्तों ठाकुर कह रहे हैं तुम्ही तो रक्षा कारा पालक अमार, तुम्हारा चरण बिना आशा नहीं आर, कि आप ही हमारे रक्षक हो, आप ही पालक हो और आपके चरण को मैं छोड़ के हमें कोई आशा नहीं है। तो किस प्रकार से हम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकते हैं, वो इस पूरे स्कंद के अंदर रिपीटेडली हम देखें तो अनगिनत बारी जो है भगवान के नामों की जो है व्याख्या की गई है कि भगवान के शरण करने का एकमात्र उपाय है वो है भगवान के नामों की शरण ग्रहण करना। और भगवान के नामों की अनलिमिटेड पोटेंशियल का वर्णन किया गया है बारंबार ऐसे करके। स्टार्टिंग के अंदर जो है जब अजामिल के प्रसंग के अंदर जब सभी विष्णु दूत यमदूतों को मिलते हैं तो उनसे धर्म चर्चा करते हैं और उसके बाद हरिनाम की गुणगान करते हैं। इस अजामिल ने मृत्यु के समय असहाय होकर तथा अत्यंत जोर शोर से भगवान नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया है। एकमात्र उसी उच्चारण ने पूरे पापमय जीवन के फलों से उसे पहले ही मुक्त कर दिया है। इसलिए है यमराज के सेवकों, तुम उसे नारकीय दशाओं से दंड देने के लिए अपने स्वामी के पास ले जाने का स्वभाव का प्रयास मत करो। और फिर ये फेमस श्लोक आता है सांकेत्यम पारिहास्यम व्या स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघ हरम विदुहु। जो व्यक्ति भगवान नाम का कीर्तन करता है वह तुरंत असीम पापों के फलों से मुक्त कर दिया जाता है। भले ही उसने यह कीर्तन अप्रत्यक्ष रूप में, संकेत रूप में, हंसी में, संगीतमय मनोरंजन के लिए अथवा उपेक्षा भाव से क्यों न किया हो, इसे शास्त्रों के सभी विद्वान स्वीकार करते हैं। पतितः स्खलितो भग्नः संदष्टः स्तप्त आहतः हरिरित्यवशेनाः पुमानाहरति यातनः। यदि कोई हरिनाम का कीर्तन करता है और तब किसी आकस्मिक दुर्भाग्य से यथा छत से गिरने, फिसलने या सड़क पर यात्रा करते समय हड्डी टूट जाने, सर्प द्वारा काटे जाने, पीड़ित तेज ज्वर से आक्रांत होने या हथियार से घायल होने से मर जाता है, तो वह कितना ही पापी क्यों न हो, नारकीय जीवन में प्रवेश करने से वह तुरंत बरी कर दिया जाता है। श्री हरिनाम प्रभु की। तो इस प्रकार से ये देखें तो भगवान के नामों की महिमा, गुरुणाम च लघुनाम च गुरुणी च लघुनी च प्रायश्चिता निलवापानाम ज्ञातवोक्तानि महर्षिभिः। विद्वान अधिकारियों तथा महर्षियों ने बड़ी ही सावधानी के साथ यह सुनिश्चित किया है कि मनुष्य को भारी से भारी पापों का प्रायश्चित करने के लिए प्रायश्चित की भारी विधि का तथा हल्के पापों के प्रायश्चित के लिए हल्की विधि का प्रयोग करना चाहिए, किंतु हरे कृष्ण कीर्तन सारे पाप कर्मों के प्रभावों को, चाहे वे भारी हों या हल्के, नष्ट कर देता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके बाद कहते हैं, जिस तरह अग्नि सूखी घास को जला देती है, उसी तरह भगवान नाम, चाहे वह जाने में या अनजाने में उच्चारण किया गया हो, मनुष्य के पाप कर्म के फलों का निश्चित रूप से जलाकर राख कर देता है। यदि किसी दवा की प्रभावकारी शक्ति से अनभिज्ञ व्यक्ति उस दवा को ग्रहण करता है या वह जबरन खिलाई जाती है, तो वह दवा उस व्यक्ति के जाने बिना ही अपना कार्य करेगी, क्योंकि उसकी शक्ति रोगी के जानने पर निर्भर नहीं करेगी। इसी तरह भगवान नाम के कीर्तन के महत्व को न जानते हुए भी यदि कोई व्यक्ति जान में या अनजान में उसका कीर्तन करता है, तो वह कीर्तन अत्यंत प्रभावकारी होगा। तो इस प्रकार से भगवान के जो शुद्ध नाम है, ये एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा हम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकते हैं। और इसके बाद में यमराज भी जो है महाजन, इज वेरी एक्सटैटिक टू ग्लोरीफाई द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। भगवान के नामों का गुणगान करने बहुत एक्सटेसी में गुणगान करते हैं, तस्मा संकीर्तन। यमराज भी करते हैं, बाद में यमराज इस प्रकार से बोलते हैं, किस व्यक्ति को आप लेके आओ, जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतस न स्मरति तत चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि ताना न यद्वम असतो अकृत विष्णु कृत्यान। हे सेवकों, तुम लोग केवल उन्हीं पापी पुरुषों को मेरे पास लाना जिनकी जीव कृष्ण के नाम तथा गुणों का कीर्तन नहीं करती, जिनके हृदय कृष्ण के चरण कमलों का एक बार भी स्मरण नहीं करते तथा जिनके सिर एक बार भी कृष्ण के समक्ष नहीं झुकते। मेरे पास उन लोगों को भेजना जो विष्णु के प्रति उन कर्तव्यों को पूरा नहीं करते जो मानव जीवन के एकमात्र कर्तव्य हैं। ऐसे मूर्खों तथा धीरतों को मेरे पास लाना। तो जो भगवान के गुणगान नहीं करते ऐसे लोग यमराज के पास जाते हैं, लेकिन जिनकी जिह्वा भगवान का गुणगान करती है, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का, तो वे यमराज के पास नहीं जाते। और फिर शुभदेव गोस्वामी अजामिल के प्रसंग को अंत करते हुए बोलते हैं, तस्मा, ये अधुरा सकते हैं, हमारे पीछे बहुत सुंदर श्लोक है, तस्मा संकीर्तनम विष्णु जगल जगन मंगल अम हसाम महताम अपि कौरव्य विद्धि ऐकांतिक निष्कृतम। शुभदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, भगवान नाम का कीर्तन बड़े से बड़े पापों के फलों को भी उन्मूलित करने में सक्षम है, इसीलिए संकीर्तन आंदोलन का कीर्तन संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे शुभ कार्य है। कृपया इसे समझने का प्रयास करें जिससे अन्य लोग इसे गंभीरता पूर्वक ग्रहण कर सकें। जो व्यक्ति भगवान नाम का निरंतर श्रवण तथा कीर्तन करता है और भगवान के कार्यों का श्रवण तथा कीर्तन करता है, वह बहुत ही आसानी से शुद्ध भक्ति पद को प्राप्त कर सकता है जो उसके हृदय के मैल को शुद्ध करने वाला है। केवल व्रत रखने तथा वैदिक कर्मकांड करने से शुद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। श्री हरिनाम प्रभु की। और फिर विष्णु पद्म पुराण में बताया गया है, जिसको विष्णु ठाकुर बहुत बारी कोट करते हैं, नाम अपराध युक्तानाम नामान्ये वहरन्त्यगम अविश्रांति प्रयुक्तानि तान्ये वार्थकराणि च। यदि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन अपराध सहित भी करता है, तो वह अविचल भाव से निरंतर कीर्तन करते हुए अपराधों से बच सकता है। जो इसका अभ्यस्त हो जाता है वह शुद्ध दिव्य पद को प्राप्त हो सकता है। तो यदि हम अपराध पूर्वक और ध्यान पूर्वक जप करेंगे यदि भगवान के नामों का, तो निश्चित रूप से हमें जो है इस शुद्ध भक्ति के स्तर पर आ सकते हैं। जिस प्रकार महाराज शुद्ध चित्रकेतु जो है नारद मुनि और अंगिरा मुनि के द्वारा दी गई भगवान के नामों की प्रार्थना से जो है इस स्तर को प्राप्त कर सके। तो भगवान के नामों के ऊपर एक बहुत सुंदर भजन है जिसको केवलाष्टकम कहा गया है, तो एक एक बार इसको गाने का प्रयास करेंगे। तो ये बहुत सुंदर भजन है, मधुर मधुरेभ्योपि मंगलेभ्योपि मंगलम पावनम पावनेभ्योपि हरेर नामेव केवलम। तो बता रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड में मधुर से भी सभी वस्तुओं से मधुर, सभी शुभ वस्तुओं से अधिक शुभ और सभी वस्तुओं से अधिक शुद्ध करने वाला जो है भगवान हरि का कीर्तन ही, नाम ही एकमात्र है। आ ब्रह्मा स्तंभ पर्यंतम सर्व माया मयम जगत, ब्रह्मा से लेके एक घास के तिनके तक जो है ये सारा जगत भगवान की माया से वशीभूत है। इसमें एक ही चीज सत्य है, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, और वो सत्य है केवल भगवान हरि का नाम ही एकमात्र चीज है। स गुरु स पिता चापी स माता बांधवोपि स शिक्षा ये चे तदा स्मर्तुम हरेर नामे व केवलम, वही व्यक्ति असली गुरु पिता माता और बंधु है यदि वो हमें यही शिक्षा देता है। क्या शिक्षा? कि हर समय याद रखो कि भगवान हरि का नाम ही केवल हरि का नाम ही सब कुछ है। ये कभी भी गारंटी नहीं है कि आखिरी क्षण कब आएगा और हमारे सारे भौतिक विचारधारा को समाप्त कर देगा। इसीलिए बचपन से ही भगवान के नाम का गुणगान हर क्षण करने का जो है अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि भगवान हरि का नाम ही सब कुछ है। हरि है सदा वसे तत्र यत्र भागवता जना गायंती भक्ति भावेण हरेर नामैव केवलम, भगवान हरि हर शाश्वत रूप से जगह में विद्यमान रहते हैं। जहां पे भगवान के शुद्ध भक्त, आध्यात्मिक रूप से उन्नत भक्त शुद्ध भक्ति के भाव में भगवान के नामों का गुणगान करते हैं, भगवान जो है हरि का नाम ही सब कुछ है। ओहो कितना दुख है, कितना दुख है, दुखा दुख तरम यतः, इससे दुख की कोई बात नहीं है कि टूटे हुए घास के शीशे के टुकड़ों जो है को किसे को के गलत पहचान करके भगवान ने जो है भगवान के हरि नाम का जो रत्न है उसको भुला दिया है। ये बार बार दियताम दियताम करना अपने कान सुना जाना चाहिए, अपने जीवा से बार बार इसका वचन करना चाहिए और बार बार ही जो है इसको गान करना चाहिए। भगवान हरि का नाम ही सब कुछ है। ये पूरा ब्रह्मांड जो है इस हरि नाम के सामने एक छोटे से शुद्ध तिनके के समान है, और ये जो है राजा ते सकलों परि चिदानंद मया शुद्धम, और ये जो है सच्चिद आनंद है और पूर्ण शुद्ध है। भगवान हरि का नाम ही सब कुछ है, कि सब कुछ है। श्री हरिनाम प्रभु की।
मधुरं मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलं, पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामैव केवलम्। भ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम्, पावनं पावनेभ्योऽपि नामैव केवलम्। मधुरं मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम्, पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामैव केवलम्।